हरे कृष्णा। आज का विषय है भगवत प्राप्ति हेतु आवश्यक दिव्य गुण। भगवान कृष्ण हमें भगवत धाम बुलाने के लिए बताते हैं कि उन्हें कौन से गुण प्रसन्न करते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो उन्हें प्रसन्न तो करते ही है, अपितु वे गुण भक्तों के आभूषण स्वरूप होते हैं और भगवान की कृपा एवं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव वह है जिसने सभी दिव्य गुण को विकसित कर लिया है। श्री कृष्ण के भक्त में धीरे धीरे श्री कृष्ण के सभी गुण विकसित होने लगते हैं। तब महाप्रभु उन 26 गुणों का वर्णन करते हैं जिनकी चर्चा श्रील प्रभुपाद अक्सर किया करते थे। 3 लाखों की इस श्रृंखला में लेख उन 28 गुणों पर चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख श्री कृष्ण उद्धव को निर्देश देते समय श्रीमद् भागवतम में करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं से खींच लेते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, तो उस समय हम पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हमने कुछ कार्य करने की योजना बनाई है और अचानक हमारा मन किसी वस्तु का भोग करने के लिए भटक जाता है, हमें तुरंत अपने मन को वहां से हटाकर अपनी योजना को पूरा करने में लगाना चाहिए। जीवन के किसी भी लक्ष्य को, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, प्राप्त करने के लिए इस गुण की आवश्यकता है। किंतु यदि हम मिथ्या अहंकार की मानसिकता में हैं, तो हम अन्यों पर नियंत्रण अथवा विजय प्राप्त करना चाहेंगे। यदि हम अपनी मूल योजना से आसानी से भटककर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करने की हमारी संभावनाएं अत्यंत कम रह जाएगी। हमारा मूल स्वभाव किसी न किसी प्रकार का सुख प्राप्त करना है, और यदि हमें प्राप्त होने वाला आंतरिक या आध्यात्मिक सुख बहुत कम होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में बार बार भौतिक वस्तुओं का भोग करने की इच्छा आएगी। हम अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, उन्हें भगवान की भक्ति में संलग्न करके एवं अपनी पूरी शक्ति से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करके कर सकते हैं। इससे हमें आंतरिक सुख प्राप्त होगा और ऐसे सच्चे सुख के आधार पर उन क्षणिक सुखों को सरलता से नकार पाएंगे जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। इस विधि से इंद्रियों पर किया गया नियंत्रण उन्हें कृत्रिम रूप से दबाने से कहीं श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेकानेक सुंदर पत्नियों के संबंध में इस नियंत्रण का प्रदर्शन किया। वे सभी इतनी आकर्षक थी कि अपनी मुस्कान एवं लज्जा से उन्होंने देवताओं तक के मनों को आकर्षित कर लिया था। स्त्री के सभी लुभाव ने हाव भाव होने की अपेक्षा वे श्री कृष्ण के मन को लेश मात्र भी उद्विग्न अथवा प्रभावित ना कर सकी। इतने आत्मसंयमी थे श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को ऋषिकेश अथवा इंद्रियों के स्वामी के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे ही हम समझ जाते हैं कि भगवान हम सभी के पिता हैं और इस संबंध के आधार पर सभी जीवों का एक दूसरे से आत्मीयता का संबंध है। मृदु, जैसे ही हम समझ जाते हैं कि भगवान हम सभी के पिता हैं और इस संबंध के आधार पर सभी जीवों का एक दूसरे से आत्मीयता का संबंध है, स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार अत्यंत मृदु हो जाता है। विनीत, सुशील, शिष्ट तथा नम्रता के कारण हम दूसरों के अधिकारों एवं रुचियों का सम्मान करते हैं तथा उन पर अतिक्रमण न करने के लिए अत्यंत सावधान रहते हैं। अन्यों पर नियंत्रण करने अथवा शासन करने की कोई इच्छा न होने के कारण हम शांति तथा मैत्री पूर्वक रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हम भगवान श्री कृष्ण के इस शिष्ट तथा विनीत स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर को मालूम था कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने रथ पर बैठकर आए भगवान का यथोचित स्वागत करने का प्रयास किया, किंतु इससे पहले वे कुछ कर पाते भगवान ने अपने रथ से छलांग लगाई और महाराज युधिष्ठिर के चरणों पर झुककर प्रणाम किया। यदि भी श्री कृष्ण भगवान है, वे कभी भी अपने व्यवहार में सामान्य शिष्टाचार का पालन करना नहीं भूलते। दूसरे शब्दों में उन्हें अपने पद का मिथ्या अभिमान नहीं है, किंतु यदि हम मिथ्या अहंकार की मानसिकता में है तो हम अन्य पर नियंत्रण अथवा विजय प्राप्त करना चाहेंगे, और यदि कोई हमारी योजना में बाधा डाले, विरोध करे या उसे नष्ट करने का प्रयास करे, तो हम उसके साथ बहुत कठोरता का व्यवहार करेंगे और शायद अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसे मार भी दे। ऐसी मानसिकता शिष्ट व्यवहार के विपरीत है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक बाधा बन सकती है। इसलिए हमें बार बार सोचना चाहिए कि हम शाश्वत आत्मा है या क्षण भंगुर शरीर नहीं। सुव्यवहार जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे विचार वाणी तथा कार्य भी शुद्ध होंगे, यहाँ तक कि हम स्वाभाविक रूप से किसी भी अपवित्र वस्तु को स्पर्श करने का या किसी भी गलत कार्य करने से कतराएंगे, उस अवस्था में हमारा व्यवहार सामाजिक शिष्टाचार के नियमों के अनुरूप होगा। हम किसी को भी अकारण कष्ट नहीं देंगे और इससे लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ेगा और हमारा संग करने में उन्हें प्रसन्नता होगी। अकिंचन, ये जानते हुए कि भगवान ही सर्वोच्च स्वामी है, हम समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। यदि भी कानूनी रूप से हम अपनी संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं, किंतु अधिक से अधिक हम भगवान की ओर से उसके रखवाले ही हैं। ये जानते हुए हमें तब ना तो शोक करना चाहिए और ना ही शिकायत करनी चाहिए जब भगवान उन वस्तुओं को हमसे दूर कर देते हैं या हमें उन वस्तुओं से दूर कर देते हैं। अपनी संपत्ति के साथ इच्छा अनुसार व्यवहार का अधिकार सदैव भगवान के पास सुरक्षित रहता है। अक्सर हम अपनी संपत्तियों से आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमारे सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से यह अज्ञानता है। केवल परमात्मा हमें सच्चा सुख दे सकते हैं, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। वे हमारे कर्म फलों का लेखा जोखा रखते हैं और फलस्वरूप सुख या दुख प्रदान करते हैं। एक बार यदि हम भगवान के संग में प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर लेंगे, हम भौतिक सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं को सरलता से त्याग पाएंगे। अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर हीन वस्तु को त्यागना हमारे लिए सहज हो जाएगा। भौतिक कार्यों से मोह, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना व्यवसाय अथवा नौकरी केवल इसलिए नहीं कर सकते कि वे आध्यात्मिक न होकर भौतिक प्रतीत होते हैं। कोई भी कार्य केवल इसलिए कि वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के गुणगान अथवा सेवा में नियुक्त नहीं है, उसे भौतिक नहीं बनाता। यदि हम अपनी कंपनी या संस्था को जिसके लिए हम काम करते हैं भगवान का ही मानते हैं और भक्ति भाव से अपनी सेवाएं करते हुए प्रेम पूर्वक उसके फल को भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह कार्य पूर्णतः आध्यात्मिक ही है। किंतु यदि हम अपने कार्य को केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करते हैं और भगवान को पूरी तरह भूल जाते हैं, तो वह कार्य निश्चित ही भौतिक है। ऐसा करने से हम उन कार्यों में और अधिक बनते चले जाते हैं और इस जीवन के साथ साथ आने वाले जीवनों में भी अधिकाधिक कष्टों के भागी बनते हैं। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों का आध्यात्मिकरण करने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार खाना, हमें केवल उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अन्यथा अधिक खाने से हम रोगी बन जाएंगे। इसलिए हमें उत्तेजक व्यंजनों को ठूस ठूस कर खाने से बचना चाहिए और ना ही हमें इतनी तपस्या करनी चाहिए कि हम दुर्बल और रोगग्रस्त हो जाएं। खाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, जिससे हम भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सके। इतना ही नहीं, हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित करने योग्य हो, और भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही उन्हें खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन भगवान हमें जिस भी प्रकार का भोजन प्रदान करें, हमें कृतज्ञ तथा संतुष्ट रहना चाहिए। शांत, सच्ची शांति की अवस्था प्राप्त करने पर हम प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी उद्विग्न अथवा परेशान नहीं होंगे और न ही हम उनके प्रति उदासीन ही रहेंगे, अपितु हम प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सचेत रहेंगे और उनसे ऊपर उठने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार की शांति केवल नियमित रूप से स्वयं भगवान का संग करके ही प्राप्त की जा सकती है। जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जब शांति की इस अवस्था को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। और यदि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करेंगे तो हम और अधिक गहन शांति का अनुभव कर सकते हैं। और वह निर्देश है स्थिर सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के अपने दृढ़ निश्चय में हमें अडिग रहना चाहिए। यदि हम दृढ़ नहीं होंगे अनेक बाधाएं हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य से पथ भ्रष्ट कर सकती है। ये बाधाएं कैसी भी हो सकती है, सुख दुख विजय पराजय लाभ हानि आदि। यदि हम इनमें से किसी एक या सबसे प्रभावित हो जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये समस्याएं हमारे अधिकतर समय एवं शक्ति को निगल जाएंगी और आध्यात्मिक साधना एवं अध्ययन के लिए हमारे पास मुश्किल से कुछ बच पाएगा और धीरे धीरे ये हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए हमें सदैव स्वयं को स्मरण करना चाहिए कि अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान के पवित्र नामों का जप एवं कीर्तन करने के साथ साथ ऐसा करने से हम आध्यात्मिक पद पर दृढ़ रहने की अपनी इच्छा को और अधिक मजबूत करते हैं। यदि हमारी दृढ़ता प्रबल होगी तो विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर हम शीघ्रता से भक्ति के मार्ग पर पुनः अग्रसर हो जाएंगे। जब हम अपनी साधना और अध्ययन के प्रति स्थिरता एवं दृढ़ता विकसित कर लेते हैं तो हम इनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। यह शक्ति उन बाधाओं से बचाव के लिए अत्यंत सहायक है जो अन्यथा हमें भौतिक समस्याओं में पूरी तरह उलझाने के लिए पर्याप्त होगी। भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने में भी यह सहायक हो सकती है। इसलिए हमें सभी प्रकार से अपने आध्यात्मिक प्रयासों में स्थिर रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।